ओम शांति। प्यारा बाबा, हम सब बच्चों को अपने समान बनाने के लिए रोजाना भिन्न भिन्न शिक्षाओं से सजाते रहते हैं। अगर हम हर दिन की मुरली में जो भी बाबा इशारे देते हैं उनको प्रैक्टिकल करके चलें तो उसमें सहज सफलता अनुभव होगी। आज भी बाबा ने मुरली में पढ़ाई पर कितना जोर दिया, कितना महत्व बताया पढ़ाई का। चाहे कोई भले शरीर छोड़ने वाला भी हो तो भी मुरली जरूर सुनना है, क्योंकि उसका महत्व है। जो भक्ति में आज गायन बना है कि गंगा का तट हो और गंगा जल मुख में हो तो प्राण तन से निकले हैं, तो मुरली सुनते सुनते बाबा की याद में शरीर छूटेगा तो अंत मते सो गति होगी। ऐसे ही आज का वरदान क्या था? क्या समय और परिस्थितियों के अनुसार श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अष्ट शक्ति संपन्न भव। तो समय को देखते हुए हमें वैसी स्थिति बनाकर चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय आने वाला जो समय है उसको जब एक तरफ बाबा की प्रत्यक्षता होगी और दूसरी तरफ विनाश की प्रक्रिया शुरू होगी तो अनेक हलचल की परिस्थितियां होंगी। तो उन परिस्थितियों में उनके प्रभाव से हमारी स्थिति मुक्त रहे, हम अपने आप को मुक्त रख सकें, इसलिए भी श्रेष्ठ स्थिति बनाकर चलना बहुत जरूरी है। और उसके लिए वर्तमान समय के हिसाब से स्थिति में भी कौन सी स्थिति चाहिए, कई स्थितियां है ना। तो हमारी अंतिम स्थिति का गायन क्या है? फरिश्ता स्थिति। सदैव उड़ते रहे, कोई भी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति हमारी स्थिति को प्रभावित नहीं करे। तो किसी भी स्थिति की अनुभूति करने के लिए जरूरी है, या वैसी स्थिति बनाने के लिए बातें तो कई हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे अंदर एक उमंग और उत्साह होना चाहिए कि मुझे ऐसा बन के दिखाना है, करके दिखाना है। अगर ये उमंग उत्साह का एक संकल्प बना रहता है तो ये आपसे आगे का पुरुषार्थ करवाएगा। तो सदा उड़ती कला में उड़ते रहने के लिए, उड़ने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? पंखों की। कौन से पंख चाहिए हमें? उमंग उत्साह की। और उमंग उत्साह निरंतर जीवन में बना रहे तो और कम क्यों होता है, इन बातों पर आज हम विचार करेंगे। आप सभी ने, बहुतों का अनुभव होगा, जब नए नए बाबा के बनते हैं तो किसी से पूछो तो कैसा लगता है, भाई क्या अनुभव हो रहा है, तो क्या मुख्य बोल होते हैं? बस बात नहीं पूछो, उड़ रहे हैं। हम गुस्सा के बोल होते हैं ना बहुतों के, लेकिन उसी से एक साल ज्ञान में चलने के बाद पूछो तो क्या मुख्य बोल होते हैं? ठीक है, हैं? वो लास्ट की बात है। तो उसके बाद 5-10 साल चलने के बाद पूछो तो जो इन्होंने बताया चल रहे हैं। सबकी बात मैं नहीं कह रहा, लेकिन ज्यादातर लोगों से ऐसा सुनने को मिलता है, बहुतों का अच्छा भी है समय अनुसार। तो बाबा तो कहता है निरंतर चढ़ती कला होनी चाहिए। क्यों उमंग उत्साह कम हो जाता है? एक बात, पहली बात, जब स्वयं से अटेंशन हटकर दूसरों की तरफ चला जाता है। देखो, आप में से बहुतों को यह अनुभव होगा कि जब हम नए नए बाबा के बनते हैं तो फुल अटेंशन अपने आप और बाबा पर ही होता है, और किसी को देखते भी नहीं, देखते सुनते भी ना सुनते, तो कितना खुशी उमंग उत्साह बना रहता है। और वही धीरे धीरे जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं, हाँ वो भाई जी क्या कर रहे हैं, वो माता जी कैसे चल रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो फुल अटेंशन एक बाबा और अपने ऊपर था, वो थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर थोड़ा सा उधर बट गया तो क्या हुआ, उतना बाबा से कमी आ गई, उतना उमंग उत्साह खुशी भी कम हो गया। तो जिनको पुरुषार्थ में आगे जाना है, उमंग उत्साह को बनाकर रखना है, उसके लिए जरूरी है कि हम अपने आप और बाबा को ही देखें और किसी को देखते हुए ना देखें। तो जिनका फुल अटेंशन अपने आप और बाबा पर रहता है, वो उनका उमंग उत्साह जीवन में बना रहता है, ऐसी आत्मा निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। दूसरा, उमंग उत्साह खुशी कम होने का कारण, जब जीवन में नवीनता कम होने लगती है। देखो, आप में से ये भी अनुभव होगा कि जब शुरू शुरू में बाबा के बनते हैं तो नया बाबा, नया ज्ञान, नए भाई बहने हैं, तो नई चीज को पाकर क्या होता है, उमंग उत्साह खुशी बना रहता है ना, खुशी होती है। और जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं तो वही बाबा, वही भाई बहन है, वही मुरली है। ज्यादातर बाबा यही कहता है, बहुत श्लोक कहते हैं ना, आत्मा समझ बाप को याद करो है। तो वही वही चीज जब देखते सुनते हैं तो क्या होता है, वो सुनते सुनते थोड़ा सा उमंग उत्साह खुशी कम होने लगता है। तो क्या करें जो जीवन में नवीनता बनी रहे तो उमंग उत्साह खुशी बना रहेगा। तो उसके लिए जो बाबा की मुरली सुनते हैं, उस मुरली को सुनकर जो भी पॉइंट आपको अच्छी लगे उसको अलग से नोट करें, और नोट करके उस पर मनन चिंतन करें, विचार सागर मंथन करें, तो उससे कोई न कोई नई पॉइंट निकलकर सामने आएगी और जिसे पाकर उमंग उत्साह खुशी बना रहेगा। अगली पॉइंट उमंग उत्साह खुशी बनाए रखने के लिए एक शब्द याद रखो। क्या, कौन सा शब्द? निरंतर। कई बार बाबा मुरलियों में कहता है, जिसको दूसरे शब्दों में भी कहता है, सदा या लगातार, कंटिन्यू। तो क्या निरंतर रखें? मुझे निरंतर बाबा को याद करना है, मुझे निरंतर नियम मर्यादाओं की पालना करके चलना है, मुझे हर बात में निरंतर अपने आप को बनाकर रखना है। मना अंतर गैप नहीं पड़ना चाहिए। जैसे बाबा ने कोई बात आज मुरली में कही और यदि हम तुरंत उसको वैसा करके चलते हैं तो बाबा वैसा बनने करने की शक्ति भी साथ साथ दे देते हैं, और जो आत्माएं उसी समय प्रैक्टिकल करते हैं उन्हें सहज सफलता की अनुभूति होती है। तो ये लक्ष्य रख के चलो, मुझे हर बात में निरंतर रहना है, अंतर गैप नहीं पड़ना चाहिए, तो उमंग उत्साह खुशी भी निरंतर बना रहेगा। और ये भी विशेष ध्यान देने की बात है कि उमंग गुस्सा खुशी हम किसी का कम ना करें। अगर हमारे बोल व्यवहार कर्म से कोई ऐसा कर्म हुआ या बोल बोल दिया जिससे कि दूसरों का उमंग गुस्सा खुशी कम हुई, तो उसके परिणाम स्वरूप आपकी भी उमंग गुस्सा खुशी कम होगी, ये निश्चित है। तो देखो, बाबा भले चाहे कोई कैसा भी बच्चा है बाबा का, कितनी भी उसके अंदर कमी कमजोरियां, लेकिन जो भी उसके अंदर एक दो जितने भी गुण विशेषता होंगे उनकी स्मृति दिलाते बाबा ऊंचा उठाता है, उमंग उत्साह बढ़ाता है, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे कर सकते हो, तुमने ऐसा किया था, ऐसे बन सकते। तो उस विधि से हम भी हर एक की विशेषता महानताओं को देखते उमंग उत्साह खुशी बढ़ाए, कभी भी कम ना करें किसी। अगर कम हुआ, ऐसा कोई बोल व्यवहार कर्म हुआ हमारे से, तो उसके परिणाम स्वरूप आपकी भी खुशी उमंग उत्साह कम होगी। आज जो भी जिसके सामने परिस्थिति, समस्याएं, बातें आ रही हैं, वास्तव में कहने में तो कह देते हैं भाई फलाना मेरे को बहुत दुख देता है, वो बहुत तंग करता है, लेकिन ज्ञान क्या कहता है कि बिना हिसाब किताब के कुछ भी नहीं हो रहा है। इन सब के पीछे हमारे कर्मों का हिसाब किताब जुड़ा हुआ है, वो वैसे ही चुकतू होना है। इसलिए ये ध्यान देने की बात है कि हम अपने बोल व्यवहार कर्मों से सबको सुख दें, खुशी उमंग उत्साह बढ़ाएं। एक अनुभव, एक बुजुर्ग व्यक्ति था, तो कहीं मेला लगा था, उसमें वो गया तो वहां बहुत भीड़ थी। तो जहां के जाना था तो उसने सोचा कोई ऐसा व्यक्ति मेरे को मिल जाए जो थोड़ा मेरी मदद करे, इससे पार हो जाए तो अच्छा लगे, कहीं भीड़ भाड़ में गिर गिरा जाए। तो आगे एक जवान लड़का जा रहा था, उसको कहा बेटा थोड़ा आप मेरी मदद करेंगे, मेरे को इस रास्ते से पार करा दो। बोले ठीक है चलो मैं भी उधर जा रहा हूं। तो उसको अपना झोला डंडा पकड़ा दिया और उसके साथ साथ चलने लगे। बातचीत करते करते बहुत समीपता आ गई, तो फिर आगे चलकर उसने बोला आप यहां बैठो, मैं थोड़ा सा बाथरूम होके आता हूं। तो उसको झोला डंडा पकड़ा दिया, तो उसको बहुत देरी हो रही थी, तो लड़के ने सोचा इतनी देर होगी, बुढ़ा है ही नहीं, पता नहीं मेरे को जल्दी जाना है और कितना समय लगाएगा। ऐसे ध्यान करते करते उसका ध्यान उस बैग की तरफ गया, तो उसने सोचा कि इस बैग में बुढ़े ने क्या रखा है, मैं जरा खोल के तो देखूं। तो उसने खोल के देखा तो उसने बहुत सारे पैसे रखे हुए थे, और ये देखकर और लड़के का मन ललचा गया कि तो इतना पैसा है, अगर मैं ले जाऊंगा तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, मेरा जीवन ऐसे ही बेड़ा पार हो जाएगा, चलो छोड़ो पता नहीं बुढ़ा कब आएगा। चल पड़ा जी बैग को लेकर। थोड़ी देर के बाद वो बुढ़ा आया, तो हाय मेरा झोला, हाय मेरा डंडा, हाय मेरा झोला, ऐसे करते करते उसकी सारे जीवन की कमाई थी, तो उसको हार्ट अटैक आया और उसने शरीर छोड़ दिया। उधर जो वो लड़का झोले पैसे का झोला लेकर गया, तो एक दुकान खोल ली उसने, दुकान में बढ़ोतरी होती गई और कुछ दिनों के बाद एक कंपनी खड़ी कर ली, उसमें बढ़ोतरी होती गई, शादी कर ली, कुछ दिन के बाद बच्चे भी हो गए। धीरे धीरे चलता रहा, धंधा अच्छा बढ़ता रहा उसका है। बच्चे बड़े हुए तो एक को डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ाने के लिए बिठा दिया, एक को इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए बिठा दिया। पढ़ते पढ़ते जब पढ़ाई पूरी होने को आई, तो डॉक्टर बनने से पहले हेल्थ की चेकिंग होती है, तो उसकी हेल्थ की चेकिंग हुई तो ब्रेन में ट्यूमर निकला। बोल ठीक है ट्यूमर का भाई ऑपरेशन कराना पड़ेगा, बोल कराओ ऑपरेशन। ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। नहीं बोल कितना भी पैसा खर्च हो जाए लड़का ठीक होना चाहिए, अच्छे से अच्छा बड़ा भी डॉक्टर के पास लेकर जाओ। तो बड़े हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गए, उसने सारा चेक किया तो बोल दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। बोल ठीक है करो ऑपरेशन, लड़का ठीक होना चाहिए। दोबारा ऑपरेशन हुआ, तो धीरे धीरे जितना उसने कमाया था वो सारा पैसा उसकी इलाज में बीमारी में वो लगाता गया लगाता गया लगाता गया। दोबारा ऑपरेशन हुआ, फिर भी वो लड़का ठीक नहीं हुआ और ही सीरियस होता चला गया। और जिस दिन उसका शरीर छोड़ने का दिन आता है, उस दिन रात को उस लड़के के स्वप्न में वही बुढ़ा आता है जिसका वो झोला लेकर आया था, और आकर उसको कहता है कि देखो बेटा आप मेरा पैसे का झोला लेकर आ गए, और मैंने आपके लड़के के रूप में जन्म लिया है, और मैंने आज आपसे अपने सारे पैसे का हिसाब किताब चुकता कर लिया है, मैं जा रहा हूं। बस उसने दुकान खोली, वो भी बंद करनी पड़ी, कंपनी बंद करनी पड़ी, और लड़का भी गया उसका। अब इस वर्तमान की रीति से आप इस अनुभव को देखो तो क्या लगेगा, भाई उसके साथ तो बड़ा खराब हो गया है, दुकान भी कम बंद कर दी, कंपनी भी बंद कर दी, लड़का भी गया, ये तो बड़ा गलत हो गया। लेकिन इन सब के पीछे राज क्या है, व्यक्ति के कर्मों का हिसाब किताब, और वो वैसे ही चुकतु होना है। इसलिए ये ध्यान देकर चलने की बात है कि चलो जो हो गया वो हो गया, लेकिन ज्ञान में आने के बाद विशेषकर कुछ भी ऐसा ऊपर नीचे हुआ तो भगवान का एक का 100 गुना पाप चढ़ेगा, दंड मिलेगा। इसलिए ये ध्यान देकर चलने की बात है कि हम अपने बोल व्यवहार कर्मों से सबको सुख दें, आगे बढ़ाने की प्रेरणा दें, उमंग उत्साह बढ़ाएं, तो आपका भी उमंग उत्साह खुशी बना रहेगा। और उमंग उत्साह खुशी बनाए रखने के लिए अपनी दृष्टि को गुणग्राही बनाएं। अगर हम देहभान में हैं तो हरेक की कमी कमजोरियां ही नजर आएंगी हैं, और वो फिर हमारे अंदर भी आने लगेंगी। और यदि गुण विशेषता देखेंगे हाँ, तो गुण विशेषता कैसे दिखाई देंगी, जब हमारी दृष्टि आत्मिक होगी। बाबा देखो, क्यों बाबा को कमी कमजोरियां नजर नहीं आती, क्योंकि वो शरीरों को देखता ही नहीं है, वो आत्मा पर ही उसकी नजर जाती है। और आत्मा भी हरे हमेशा हर आत्मा को वो संपन्न स्वरूप में देखता है, इसलिए वहां तो कोई कमी कमजोरी है ही नहीं है। तो इस प्रकार से हम भी यदि अपनी दृष्टि को आत्मिक बनाकर चलते हैं कि ये सभी महान आत्माएं, देवी देवता बनने वाली आत्माएं, राजा महाराजा बनने वाली आत्माएं, तो किसी की कमी कमजोरी नजर नहीं आएंगी। हर एक की गुण विशेषता ही दिखाई देंगी तो उमंग उत्साह बना रहेगा। एक अनुभव इस पर भी, एक जगह कोई व्यक्ति अपने दोस्त के पास मिलने के लिए गया, तो वहां उसको छत के ऊपर एक कमरा था, उसमें ठहरा दिया। तो उसने अपने कमरे की खिड़की से देखा तो पड़ोसी की छत पर जो कपड़े सुखाए हुए थे उसको बहुत गंदे नजर आए। तो उसको लगा कैसा व्यक्ति, इनको ठीक तरह से कपड़े धुलाई करना भी नहीं आता है, है? ऐसे गंदे गंदे कपड़े सुखाए हुए, मैं इसको चल के बताता हूं। तो गया, उसको कहा कि आप लोगों को ठीक तरह से कपड़े धुलाई करना नहीं आता, ऐसे गंदे कपड़े सुखाए हुए। तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं ऐसा तो नहीं है, बोले चलो मैं चल के बताता हूं। तो गए, जाकर देखा तो कपड़े तो साफ थे। तो बोला आपने कहां से देखा, तो बोले मैंने अपने कमरे की खिड़की से देखा। तो वहां जाकर देखा तो जो खिड़की का शीशा था वो गंदा था, तो इसलिए गंदे शीशे से देखा तो गंदगी ही नजर आई। तो इसी प्रकार से हमारी आंखों रूपी खिड़कियों का जो दृष्टि रूपी शीशा है वो यदि अवगुणी है, तो कोई कैसा भी व्यक्ति हो उसमें भी उसको कमी कमजोरियां दिखाई देंगी है। अगर दृष्टि आत्मिक है तो हर एक की वहां गुण विशेषता ही नजर आएंगी और उमंग उत्साह खुशी बना रहेगा। और उमंग उत्साह खुशी बनाए रखने के लिए हम सदा ही अपने आप को गार्डली स्टूडेंट समझ कर चले कि मैं ईश्वरीय विद्यार्थी हूं। तो विद्यार्थी के जीवन का लक्ष्य क्या होता है, पढ़ना है, सीखना है, आगे बढ़ना है, और जो भी लक्ष्य रखा उसे प्राप्त करना है। तो उमंग उत्साह खुशी बना रहता है। लेकिन अगर किसी के मन में ये आ जाए भाई हम तो बहुत पुराने हो गए ना, हमने तो सब कुछ जान लिया है और कुछ करने की क्या जरूरत है, तो वहां क्या होगा, फिर उमंग उत्साह खुशी कम होने लगेगा। हमने अपनी आंखों से देखा, दादी प्रकाशमणि जी अच्छी अवस्था में थी, तो कई बार कुछ कारोबार आ गई तो दादी मुरली नहीं सुनाती थी, जानकी दादी मुरली सुनाती थी। और दादी आकर बैठती थी थोड़ा देरी से क्लास में, तो सामने दादी सोफे पर बैठ के डायरी में मुरली के पॉइंट नोट करती थी। अब उनके मन में भी तो यह विचार आ सकता है ना, भाई हमने तो यज्ञ की स्थापना के से शुरू से ही है, हमने तो सब कुछ जान लिया है, और कुछ करने की क्या जरूरत है। लेकिन कभी भी उनके मन में विचार नहीं आया, जब तक भगवान सुप्रीम टीचर बनकर हमें पढ़ा रहा है रोजाना, और हम कहें हमने सब कुछ जान लिया तो ये क्या होगा, उसकी पढ़ाई का डिसरिगार्ड होगा। इसलिए हमें जब तक वो पढ़ाई पढ़ा रहा है तब तक हमें गार्डली स्टूडेंट बनकर रेगुलर पढ़ाई पढ़नी है, तो उमंग उत्साह खुशी निरंतर बना रहेगा और जो भी लक्ष्य रखा उसे प्राप्त करना है। तो इन कुछ एक बातों को हम अपना कर चलेंगे तो उमंग उत्साह खुशी बना रहेगा, तो उड़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। और उड़ती कला का अनुभव करने के लिए उड़कों भारी कौन सी चीजें बनाती है हमारी स्थिति को, बोझ अनेक प्रकार का, व्यर्थ का है या तेरे मेरे का या दुनियावी नेगेटिव चिंतन का, अनेक बातें हैं जो हम व्यर्थ की बातें या नेगेटिव बातें जो हमारी स्थिति को भारी बना देती हैं, पुराने स्वभाव संस्कार या किसी ने कुछ बोल दिया है। तो जहां स्थिति भारी हो गई तो वहां उड़ना मुश्किल होगा है। तो बाबा ने क्या कहा है बच्चे, बाबा को पता है कि ये जन्म जन्मांतर से इन आत्माओं ने अनेक बोझ उठाते उठाते भारी हो गए, थक गए, निराश उदास हो गए हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चे मैं तुम्हारे सभी बोझ हरने के लिए आया हूं, मुझे दे दो और हल्के हो जाओ, तो हल्के होके चलना उड़ना सहज होगा है। तो सभी देख लेना, सबने अपने बोझ बाबा को दे दिए हैं या कुछ रखा है अपने पास भी थोड़ा है। हाँ, तो अगर रखा है तो वो उड़ने नहीं देगा है, वो बोझ भारी बना देगा। किसी के सिर पर 5-10 किलो वजन रख दिया जाए, उसको को दौड़ो तो मुश्किल होगा ना है, और वजन ले लो उससे तो हल्का होके उसको दौड़ना सहज हो जाएगा। तो ऐसे ही बाबा ने, और सबसे बड़ा बोझ तो है ये देह का भान। कब देह भान में आ जाते हैं हम पता ही नहीं चलता। अब देह तो उड़ेगी नहीं, तो इससे न्यारे डिटैच हम होंगे, आत्मा उड़ पाएगी ना है। तो आत्मिक स्वरूप में जितना रहकर चलेंगे, अशरीरी बनकर रहेंगे, योग में भी जब बैठे तो तुरंत बुद्धि को बाबा की तरफ ना ले जाएं, पहले हम इस देह से न्यारा बनाएं अपने आप को, आत्मिक स्वरूप में स्थित करें, फिर बाबा के पास पहुंचो तो सहज मिलन का अनुभव होगा, सहज उड़ जाएंगे। तो ये भारी बनाते स्थिति हमारी, ये देह का भान, या फिर पुराने स्वभाव संस्कार, तेरा मेरा का अभिमान, मैंपन का अभिमान। तो जो भी बोझ है, जो बातें हमारी स्थिति को भारी बनाती हैं, उन सभी बोझ को बाबा को अर्पित कर दो, तो हल्के होके चलना उड़ना सहज हो जाएगा। इस पर भी एक अनुभव, एक कहीं बड़ा प्रोग्राम होने वाला था, तो वो बहन जी पहली बार बड़ा प्रोग्राम कर रही, मेगा प्रोग्राम, तो उसको बड़ी चिंता लग गई, 2 दिन से नींद नहीं आ रही थी, क्या होगा कैसे होगा, ये चाहिए वो चाहिए, ये साधन सुविधा, अनेक बातें होती है ना बड़े प्रोग्राम में, तो चीजों की जरूरत होती है। तो तीसरे दिन रात को ऐसी वो लेटी तो थोड़ा नींद आ गई, तो नींद में वो स्वप्न देखती है, ब्रह्मा बाबा उसके पास आता है और कहता है, बच्ची आपको कोई चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये तो कार्य बाबा का है, देखो कराने वाला बाबा है, आपको तो सिर्फ निमित्त बन के पार्टी में जाना है, देखो कैसे बाबा का कार्य हो रहा है। जो 3 दिन बाद मेगा प्रोग्राम होने वाला है, 3 दिन पहले ही बाबा ने उसको स्वप्न में दिखा दिया, बहुत बड़ी स्टेज बन के तैयार हो गई है और बड़े बड़े VIP पहुंच गए हैं और प्रोग्राम चल रहा है, बहुत सुन सुन के लोग खुश हो रहे हैं। तो ये देखकर बहन जी हल्की हो गई है कि मैं क्यों चिंता फिक्र करूं, जब बाबा खुद कह रहा है कराने वाला मैं हूं और मुझे तो निमित्त बन के पार्टी बजाना है, तो ये जब हल्की होगी, या तो जिस दिन मेगा प्रोग्राम होने वाला है उस दिन जो उसने 3 दिन पहले स्वप्न में सीन देखा था वो अभी प्रैक्टिकल देख रही है, बहुत बड़ी स्टेज बन के तैयार हो गई, बड़े बड़े VIP पहुंच गए और प्रोग्राम चल रहा है, लोग सुन सुन के खुश हो रहे हैं, अच्छी सेवा हो रही है। तो इस प्रकार से कार्य बाबा का ये कराने वाला वही है, हम आप सभी को तो निमित्त बन के पार्टी बजाना है, तो कहीं भी कोई ऐसी बात समस्या परिस्थिति आए तो वहां बाबा को दिल से याद कर अर्पित कर दो और हल्के हो जाओ, तो बाबा सब कुछ करने को तैयार है। तो हल्के होके चलना उड़ना सहज हो जाएगा ना है, और उड़ती कला का अनुभव करने के लिए जो भी हमारे सामने बातें सीन दृश्य आ रहा है ड्रामा में, उस सभी को मन से स्वीकार कर चले। ऐसा तो कभी होता नहीं कि हम जो चाहें सब कुछ ही वैसा हो जाए, कभी हो जाता है तो खुश नहीं हुए तो परेशान। तो हमें ये समझ कर चलना होगा कि जो हो रहा है वही निश्चित है, वही ठीक है, वही होना है, उसी में कल्याण समाया हुआ है। तो उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को, उस बात को हम यदि स्वीकार कर चलेंगे तो हलचल खत्म हो जाती है। हलचल कब तक है? जब तक कि मन उस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो हलचल पैदा हो रही है। लेकिन जब आपके मन में ये विचार आ गया कि नहीं, जो हो रहा है वही ठीक है, वही होना है, तो हलचल खत्म हो जाती है। तो इसी तरह से हमारे सामने ड्रामा में जो सीन आ रहा है उसे हम स्वीकार कर चले और अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बना कर चले। क्योंकि बातें बड़ी कब लगती हैं, जब हमारी स्थिति साधारण है, और जहां स्थिति श्रेष्ठ है तो वहां बड़ी से बड़ी बात भी छोटी हो जाती है। तो स्थिति को श्रेष्ठ बनाकर चलना, और दूसरा कि ड्रामा के पट्टे पर अचल डोल रहना। जो सीन सामने आता है वही निश्चित है, वही होना है, उसी में कल्याण समाया हुआ है। अगर ये आपको पाठ पक्का है तो वहां किसी भी बात को देखकर हलचल पैदा नहीं होगी, स्थिति अचल डोल बनी रहेगी। एक छोटा सा अनुभव। एक जगह हम कहीं गए सेवा पर, तो एक सेंटर मॉर्निंग क्लास था वो करा के, और 10:30-11 बजे एक दूसरे सेंटर पर क्लास था। तो वहां की बहन ने गाड़ी भेजी हमें लेने के लिए, तो वो भाई को आते आते थोड़ा सा देरी हो गई। हम क्लास करा के नाश्ता करके रेडी हैं, लेकिन वो भाई पहुंचा नहीं अभी तक। तो बहन जी का फोन आ रहा है बार बार, भाई जल्दी निकलो आप, देरी होगी क्लास को। मैंने कहा हम तो बहन जी रेडी हैं निकलने के लिए, लेकिन आपका भाई गाड़ी वाला ही अभी नहीं पहुंचा है, तो हम क्या करें। तो वो आधा घंटा लेट पहुंचा, रास्ते में कुछ ट्रैफिक वगैरह होगा जो भी है, तो आधा घंटा देरी से पहुंचा। तो आधा घंटा देरी से पहुंचने के बाद उसको नाश्ता भी करना था, तो और 15 मिनट तो चाहिए कम से कम। हम जल्दी निकलना चाहते हैं, ड्रामा में देरी हो रही है। तो फिर मैंने इस बात को वहीं पुलिस स्टॉप लगा दिया। मैंने कहा इसमें भी कोई कल्याण होगा, मैं क्यों ज्यादा सोचूं, सेवा कराने वाला तो बाबा है और मुझे तो निमित्त बन के पार्टी बजाना है, और अब ड्रामा में देरी हो रही है तो इसमें भी कोई कल्याण होगा है। तो क्या हुआ कि मॉर्निंग क्लास करने के बाद दो माताओं ने प्लान बनाया कि हमको बाबा के घर के लिए, मधुबन के लिए ड्राई फ्रूट भेजना है। तो एक माता मार्केट गई ड्राई फ्रूट लेने के लिए, और दूसरी माता को बोल के गई कि आप बाबा के कमरे में योग करो, और जब तक मैं नहीं आऊं ड्राई फ्रूट लेकर तब तक भाई जी यहां से नहीं जाने चाहिए। अब आप सोचो, हम जल्दी निकलना चाहते हैं, माता जी योग लगा रहे हैं कि यहां से जल्दी नहीं जाए भाई जी, तो कैसे जाएंगे जल्दी है, सोचने की बात है ना। इसीलिए ड्रामा में जो सीन सामने आ रहा है उसे स्वीकार कर लो कि वही ठीक है, वही निश्चित है, उसी में कल्याण है, तो वहां हलचल खत्म हो जाएगी। तो अब जैसे ही उस भाई ने नाश्ता किया और पूरा किया, हम निकलने के लिए तैयार हुए, इतने में वो माता पहुंच गई ड्राई फ्रूट लेकर। भाई जी बाबा के घर के लिए मैं ड्राई फ्रूट लेकर आई हूं, और मैं तो माता को बोल के गई कि माता जी आप जब तक योग करो और जब तक मैं नहीं आऊं तब तक भाई जी यहां से नहीं जाने चाहिए। तो बड़ी खुशी होगी उसको, और हम यहां संकल्प विकल्प चला रहे थे तो इसलिए हमने भी छोड़ दिया। तो ऐसे कई ड्रामा में सीन हमारे सामने आते हैं। अगर आपके मन में प्रश्न उठेगा क्यों हो रहा है ऐसा, तो हलचल पैदा होगी। लेकिन ड्रामा के पट्टे पर यदि अचल अडोल रहेंगे। और भी एक विशेष बात देखो, कई ऐसे, ये तो चलो छोटा सा एक अनुभव रहा, लेकिन बड़ी बड़ी समस्याएं, बातें, कहीं डिसर्विस हो गई, कहीं बहुत बड़ा नुकसान हो गया, कुछ ऊपर नीचे बात हो गई। तो अब डिसर्विस वाली बात तो यज्ञ की बड़ी बात हो जाती है ना, और कई बार ऐसा होता है। तो मुझे याद आता है एक बार अव्यक्त बाप दादा ने ये बात बताई मुरली में, 1 साल पहले की बात। वो घटना होने के 1 साल पहले बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे अगली शिवरात्रि तक कमाल और धमाल दोनों साथ साथ होंगी तो बाबा की प्रत्यक्षता होगी। ये सब थे बाबा के। तो हमने सोचा कमाल हम बाबा के बच्चे करेंगे, धमाल दुनिया वाले करेंगे, है ठीक है जी। तो फिर उसके बाद जब शिवरात्रि आई, अगली शिवरात्रि आई, तो उसके कुछ दिनों पहले दिल्ली में एक बहुत बड़ा मेगा प्रोग्राम हुआ इंदिरा गांधी स्टेडियम में। अब की बात नहीं, लेकिन ये 8-10 साल पहले की बात मैं बतला रहा हूं। तो और वो डीडी वन पर, दिल्ली दूरदर्शन पर लाइव दिखाया गया वो प्रोग्राम, एक सवा घंटा। तो वाह वाह हो गई, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा प्रोग्राम, ऑल इंडिया में सबने देखा। तो क्या हो गया, कमाल हो गई है। और उसके चार पांच दिन बाद ही कुछ ऐसी बड़ी डिसर्विस हो गई, तो कोई सेंटर का कोई घटना ऐसी हो गई और वो भी टीवी पर आ गई, तो क्या हो गया, धमाल हो गई है। तो अरे ये क्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ, सबके बहुत संकल्प विकल्प चले, ये तो बड़ी डिसर्विस हो गई है। तो अब देखो, ये दोनों बातों को बाबा तो जानता था, एक साल पहले ही बाबा ने बता दिया था। अगर वो चाहता था तो रोक सकता था ना, लेकिन वो किसी के कर्म भोग में हिसाब किताब में आड़े नहीं आता है। जिन आत्माओं के द्वारा वो घटना हुई या बात हुई, उनका हिसाब किताब वैसे ही चुकतु होना था। और कुछ दिन तक वो बात रही, फिर धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो गया। तो इसलिए हम जब बाबा को, क्रिएटर है ना बाबा इस ड्रामा का, उसको ये ड्रामा पसंद है तो हमें भी तो पसंद आना चाहिए ना, है? आता है पसंद सबको, लेकिन कई ऐसे सीन आते हैं तो विचार कर लेना कि वो सीन देखकर कोई हलचल पैदा ना हो। हम केवल जब वर्तमान की रीति से कोई बात को देखते हैं, सीन को, दृश्य को, तो लगता है कि ये ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन यदि त्रिकाल दर्शी बनकर चलेंगे, रहेंगे, देखेंगे, तो वहां कभी हलचल पैदा नहीं होगी और स्थिति अचल अडोल बनी रहेगी। और हलचल जहां खत्म है, अचल अडोल स्थिति तो उड़ते रहेगा। और उड़ती कला का अनुभव करने के लिए हम सदा ही बाबा को साथी बनाकर चलें और अपने श्री सोमान में रहें। ऐसा सोमान जिसकी स्मृति में आते ही नशा चढ़े, शक्ति की अनुभूति हो। मैं लाइट हाउस माइट हाउस हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, अवतरित हुआ फरिश्ता हूं, और उसका स्वरूप बनकर योग करें, चलें सारे दिन में उसका अभ्यास करें। और दूसरा, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है, तो वहां खुशी उमंग उत्साह बना रहेगा। भगवान साथ है, कोई अकेला हो है और उसने बहुत कोशिश की, मेहनत किया, लेकिन उस कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, उसको कोई याद दिला दिया कि अरे बाबा ने तुमको वरदान दिया है, हमको तुम ही कल्प कल्प के विजयी रतन हो है, और बाबा हमारे साथ है ना, है? तो क्या होगा, इससे एक खुशी उमंग उत्साह आ जाएगा ना, शक्ति आ जाएगी आत्मा के अंदर वो करने की, और कल्प पहले वाली स्मृति उसके अंदर एक जागृति ला देगी। नहीं, कल्प पहले भी जब हमने किया था और फिर से हमको ही करना है, हम ही विजयी बने थे, तो कौन सी बड़ी बात है, है? तो उस आधार से वो व्यक्ति सहज उस कार्य में सफलता प्राप्त कर सकेगा। और बाबा ने खुद कहा, एक बच्चे कोई विघ्न परिस्थिति आए तुम्हारे सामने, यदि तुम दिल से याद कर मुझे कहेंगे तो मैं तुरंत तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगा। तो बाबा कहता नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव कराता है, यूज करो उसको। उसने खुद कहा है, मेरी सर्वशक्तियां तुम्हारे लिए हैं, उन्हें यूज करो, लाभ लो, फायदा उठाओ, और सदैव मैं तुम्हारा साथी बनकर साथ दे रहा हूं। तो उसके साथीपन का लाभ उठाओ, यूज करो उसको। तो एक ऐसा ही अनुभव, जहां सर्वशक्तिवान साथी बन के साथ दे रहा हो, तो वहां बड़ी से बड़ी समस्या भी हल्की हो जाएगी, और कोई भी विघ्न परिस्थिति है जो आप जिसको पार नहीं कर रहे हो, या आपके अंदर वो क्षमता नहीं है उस समस्या को हल करने की है, तो बाबा का आह्वान कर लो, वहां देखो कैसे वो सूली से काटा हो जाती है समस्या। एक ऐसा ही अनुभव, अभी पिछले दिनों हम गए थे उड़ीसा, तो कटक भट्टी कराने गए, वहां से भुवनेश्वर गए एक क्लास कराने, वहां से पुरी जाना था। तो दो टीचर बहनें, एक माता और दो भाई थे, हम एक गाड़ी में जा रहे थे। तो थोड़ा सा देरी हो गई, तो बहन जी ने बोला थोड़ा शॉर्टकट रास्ते से चलना है। ठीक है जी, चलिए, जा रहे थे। तो रास्ते में एक गांव पड़ा, जैसे ही गांव क्रॉस करने लगे, दूसरी साइड से एक मोटरसाइकिल वाला आया और गाड़ी से टकरा गया। वो गिर गया, शुक्र है उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन मोटरसाइकिल को थोड़ा नुकसान हुआ। तो 8-10 लोग इकट्ठे हो गए, हमारी गाड़ी की चाबी ले ली और हंगामा करने लगे, अब पैसे देकर जाओ, ये है वो है। अभी गलती किसी की भी हो, लेकिन बड़ी गाड़ी वाले की मानी जाती है। तो हमने कहा भाई ठीक है, हम अपनी गलती मानते हैं और आप दुकान पर चलिए, आपकी मोटरसाइकिल ठीक करा देते हैं। नहीं, हमारे को पैसे ही चाहिए और पैसे बहुत मांग रहे। काफी समझाया लेकिन वो माने ही नहीं। तो ऐसे इस बात को हल करते करते 20-25 मिनट निकल गए और हमको ऐसे ही देरी हो रही है। तो जब समस्या हल नहीं हो रही, तो मैंने थोड़ा सा वहां से साइड को हटकर और बाबा का आह्वान किया। मैंने कहा बाबा देखो, अभी हम आपकी सेवा पर जा रहे हैं और ये लोग यहां हंगामा कर रहे हैं, कोई बात मान नहीं रहे। अब इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है आप जानते हो, आप आओ और आप इस समस्या का समाधान कराओ। तो देखो कैसे बाबा उस समस्या का समाधान कराते, एक वंडरफुल अनुभव है। बाबा तो किसी के थ्रू ही कराएगा ना। हाँ, तो वो जो माता थी वो गाड़ी चला के ला रही थी पहले से, लेकिन थोड़ी दूर से भाई चलाने लगा। तो माता को अंदर से जैसे कि फोर्स आया और वो सबके आगे आके बोलने लगी कि ये मेरी गाड़ी है, मैं आप लोगों को एक पैसा भी नहीं दूंगी और जिसको चलना है पुलिस थाने चलो, जो पुलिस फैसला करेगी वो होगा। और देखो इस व्यक्ति के मुंह से बदबू आ रही है, इसने शराब पिए हुए, शराब पी के गाड़ी चला रहा है, इसलिए हम एक पैसा भी नहीं देंगे। अब शराब पी के गाड़ी चलाना तो कानूनी अपराध है, अगर वो पुलिस में गए तो पहले उनको ही अंदर करेगी पुलिस। तो ये सुनकर वो ठंडे पड़े और 5 मिनट के अंदर तो कहने लगे कि भाई साहब हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, आप लोग जाओ। ये है बाबा की कमाल। तो इसलिए कहीं भी कैसी भी समस्या परिस्थिति आए, हम दिल से याद कर बाबा को बतला दें, बाबा का आह्वान कर लें, उसके लिए एक सेकंड की बात है। तो इस तरह से वहां असंभव कार्य भी संभव हो जाएंगे और हल्के बनकर उड़ते रहेंगे। और उड़ती कला का अनुभव करने के लिए हम अपनी डबल लाइट फरिश्ता स्थिति में सदैव रहे। मैं आत्मा भी लाइट और मेरा शरीर भी लाइट, ऐसे अपने उस डबल लाइट फरिश्ते स्वरूप को सदैव विमर्ज रूप में रख के चले। 3 अभ्यास सब रोजाना करें हैं। एक तो जो मैंने अभी बताया, अपने आप को फरिश्ता रूप में देखो और दूसरों को फरिश्ते समझकर चलो कि ये सभी फरिश्ता बनने वाली आत्माएं हैं। दूसरा, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 लोगों को आत्मा के रूप से देखना है। और तीसरा अभ्यास, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 बार अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है। 5-10-15 मिनट के बाद, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए अशरीर बन जाओ, निराकारी बन जाओ। तो ये तीनों अभ्यास आप करके चलो तो फिर देखो आप अनुभव करेंगे जैसे कि सब कुछ करते हम उड़ रहे हैं, कोई परिस्थिति समस्या आपको प्रभावित नहीं करेगी। पुरुषार्थ में भी तीव्रता आएगी, मन बुद्धि की एकाग्रता वहां सहज बढ़ जाएगी, योग पावरफुल बन जाएगा। तो फरिश्ता स्थिति अर्थात सब कुछ करते सब से न्यारे और एक बाप के प्यारे हैं। फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पांव देह रूपी धरनी से उपराम हो गया, बुद्धि से न्यारे। फरिश्ता अर्थात संपूर्ण पवित्र आत्मा। फरिश्ता अर्थात सर्व के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रख के चलने वाली आत्मा। और फरिश्ता अर्थात कुछ बोल रहे थे माता जी, क्या बोल रहे? हाँ, देह तथा देह के दुनिया से संबंधियों से कोई रिश्ता नहीं। इसका मतलब ये नहीं सब रिश्ते नाते तोड़ दो, नहीं, सब रिश्ते निभाकर चल रहे हैं, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे हैं। लेकिन बुद्धि से कोई बुद्धि उनमें ना जाए, हमारी बुद्धि को वो रिश्ते नाते खींचे नहीं, निमित्त बनकर सिर्फ टेम्परेली तोड़ निभानी है जो बाबा कहता है। तो इस प्रकार से हम अपनी फरिश्ता स्थिति बनाकर और सदा ही उड़ते उड़ाते रहें और बाप समान बन जाएं, तो ऐसी हमारी आप सभी महान आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना है। ओम शांति।